सारे सफर में से जो चीज मैंने समझी वो ये समझी है कि अगर हम किसी भी काम को नंबर एक अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, देखिए ये कहना बहुत आसान है और आप कहेंगे कि हम थक गए आपके मुंह से ये बात सुन के, इखलास अल्लाह के लिए, लेकिन क्यों नहीं, ये क्या इतना अहम है, ये कैसे पता चलेगा? मिसाल है कि मैं कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही हूँ कि नहीं, कोई सिम्टम्स हैं? हाँ बहुत सारी हैं। नंबर एक, कोई करे ना करे मैंने करना है, कोई देखे ना देखे मैंने करना है। तीसरी चीज, उसका कोई नतीजा बाहर निकले ना निकले मैंने वो काम करना है। नंबर चार, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े मैंने देनी है, और उसके बाद कोई बहुत फूलों के हार गले में डाले तो डाले, मुझे इससे परवाह नहीं। आपको अल्लाह ने अगर एक काम दिया ना, आप करें। मिसाल आप देखिए कि हम सब इस क्लास में आते हैं ना, आज आप आए हैं, बिलफर्ज आप यहां आते, कोई भी ना होता आपके सिवा, सिर्फ आप अकेली हैं, तो क्या मैंने करना है? अगर मैं यहां आपसे बात करने आई हूं ना, अगर आप में से एक भी यहां आके ना बैठता, तो मैंने बात करनी थी। क्यों करनी है? क्योंकि अल्लाह के लिए करना है। आप इस तरह हजरत इब्राहिम की तन्हाइयों में की हुई नेकियों को आज कैसे सफर किरतास पे बरसता हुआ बिखरा हुआ देख रहे हैं ना, अल्लाह आपकी नेकियों को भी लेके आएगा। दूसरी चीज जो मैंने इस सफर से बहुत ज्यादा सीखी है, वो सीखी है टीम वर्क। इसमें एक वीडियो आपको कहीं नजर आई तो जरूर देखिएगा, क्लीनिंग। मैं सफा मरवा की सही के दौरान देख रही थी कि हम एक तरफ थे तो दूसरी तरफ से वो सफाई कैसे करते हैं। लड़के होते हैं वो भी सेम ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, और वो बीच में, अब इतने क्राउड को आप रोकेंगे कैसे? आप देखना हमारे अपने घरों में सफाई होती है ना, तो बच्चों की शामत आई होती है, पीछे हो जाओ, पाओ ना इधर करो, आना नहीं, मैं झाड़ू फेर रही हूँ, पानी है वहां, पानी भी होता है वहां, सब कुछ होता है, सरफ भी होता है, लेकिन वो इतने खूबसूरत तरीके से करते हैं कि बिल्कुल वो भी इस तरह रस्सी डाल के ना ऐसे बिखरते हैं, तो जब वो बिखरते हैं ना तो वो फिर उतनी जगह खाली होती है। एक पानी डाल रहा था, आपको दिखेगी तो आप इंजॉय करेंगे, मैंने पूरा मंजर खड़े होकर उसको पिक्चराइज किया कि जब फर्श इस तरह साफ हो सकता है टीम वर्क से, तो लोगों के दिल क्यों नहीं साफ हो सकते, और माशरे में पहली भी गंदगी क्यों नहीं साफ हो सकती। उन्होंने उसको धोया भी, पानी भी उसका निकाला, फिर पीछे उसके पानी खुश्क कपड़ा भी एक बंदा मार रहा है और उसके साथ साथ अगलों को बचा भी रहा है। वो सीधी रो में आते जाते हैं, एक हिस्सा करते जाते हैं, फिर पलटते हैं तो वापसी पे दूसरा। बहुत खूबसूरत तरीके से टीम मैनेजमेंट है। मैंने, मुझे लगता है दुनिया का बेहतरीन क्लीनिंग का निज़ाम मक्का और मदीना में, और ये जिन्होंने हमें बताया कि 2020 में ये पूरा हो जाएगा, उन्होंने साथ ये भी बताया कि 2020 के बाद मक्का और मदीना पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिटी होंगे, पूरे इनके प्लान है। और इन्होंने इस वक्त ये जो कुछ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस वक्त जो हमें दिखती भी हैं, कहते हैं ये सब गिर जाएंगी, और इन्होंने इसको एक प्लान के साथ बना के किसको रखा है। तो डिसिप्लिन, टीम वर्क, ऑर्गेनाइज, सिस्टम को फॉलो करना, यही है वो बुनियादी चीजें जो मुझे लगता है कि जिंदा कौमों को जिंदा करती हैं। और दुआ कीजिए कि हम मुसलमान जो वहां जा के आते हैं, फिर उनको वहां से ये चीजें वापस भी नसीब हो। अब चंद मिनट जो हैं हमारे पास, मैं चाहूंगी कि आप में ऑनलाइन में जो भी कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई बात जो मैंने नहीं कही और जरूरी है कहनी, मुझे याद करवा दें, आपका वक्त है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी आप प्लीज।
कल मैं पढ़ी थी एक मैगजीन में, जैसे अभी हम देख रहे थे, और अल्लाह ताला का वो अजमत और हैबत और कुदरत और जो भी आप नाम देंगे, एक अजीब सा एहसास होता है देख के। और जब फर्स्ट टाइम गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बयान से बाहर है, जो आप बोल रहे थे ऐसे लगता था कि साथ साथ ही हैं। और ये भी नहीं समझ आती कि शायद पहले भी मैंने कहा कि ये नात ख्वां भी जो बोलते हैं ना कि मदीने की ठंडी हवाएं और मदीने का सुकून, ये चीज आज भी मैं अगर आपकी बातों के साथ चल रही थी सोच रही थी कि खाना काबा में एक दिल में हैबत, एक अजीब सा एहसास फील होता है, एहसास से बरतरी का और अल्लाह ताला की शान का। लेकिन मदीना में जाके एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे हम मिट्टी हो गए हैं, ऐसे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे एक्सप्लेन करने का स्पीचलेस इंसान हो जाता है कि उसकी हवाओं में नरमी है, उधर की मुझे अजान में नरमी लगती है, उधर की किरत में मुझे नरमी लगती है, उसकी फजा में ऑन द होल जैसे कोई अपने सीने से लगाने वाली बात होती है। और कल मैं एक मैगजीन में पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलियन कोई साइंटिस्ट थे स्पेस से रिलेटेड, तो वो मदीना यूनिवर्सिटी मक्का गए और वहां पे उन लोगों ने जब अपनी रिसर्च वगैरह की तो उन्होंने वहां पे ये अपना थीसिस लिखा, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें सबसे ज्यादा ये हमें वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमें फील हुआ कि ऊपर से जब आप रात के टाइम नीचे देखते हैं तो उनको लाइट्स की, फ्लैश लाइट्स की, दूरबीन की जरूरत होती है चीजें देखने के लिए, सिटीज कुछ नजर नहीं आता, لیکن اسپیس سے واحد ایک چیز مکہ اور مدینہ کے جو جگمگا رہے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت بھی یہ دو سٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. بہت خوبصورت
اللہ کی جگہ ہے ظاہر ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کا مڈل ہے, یعنی اگر آپ ایک پوری دنیا کے بیچ میں ایک دائرہ بنائیں تو وہ نیوکلیس جو ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے. تو یہ اللہ کی بات ہے. یہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے پہلا سنا ہوگا کہ حضرت عثمان کی وقف شدہ جگہ پر آپ نے کیا نیت کی, آپ کو کیا فائدہ ہوگا میری نیت سن کے. لیکن حقیقت ہے, میں آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے مس کیا ہوگا, لیکن بیلیو می کہ میرے دل کی عجیب حالت تھی. ہم جب میرے عثمان پہ گئے, ایک کنواں ہے آج بھی, اس کی ساری چیزیں وہاں کھڑے ہو کے جو استاد تھے انہوں نے ہمیں پوری اس کی ہسٹری سنائی, میں نے پڑھی ہوئی تھی پہلے الحمدللہ, ہم سب نے دوبارہ ان سے سنی کہ کس طرح سے حضرت عثمان کے دور میں جب فتنے آ گئے تھے تو پھر وہ ان کے ہاتھ میں جو ایک انگوٹھی تھی جس کو اس وقت کی کاروائی کے لیے یوز کرتے تھے وہ انگوٹھی اس میں گر گئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ اب خلافت کا دور ختم ہو رہا ہے. تو اس کے بالکل بازو میں ایک جگہ ہے جہاں کھجوروں کے بھی درخت تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ باغ حضرت عثمان نے وقف کیا تھا اپنے ہاتھ سے اللہ کے لیے, اور آج بھی ان کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے, اور اس باغ کی پوری آمدن جو ہے وہ وہاں لگاتے ہیں رکھتے ہیں, اور اب اس پیسے سے حرم کی خدمت ہوتی ہے. آپ دیکھیں پورے حرم میں ایک ڈونیشن باکس نہیں آپ کو دکھتا. یہ چیز تو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہتی ہوں, اس دفعہ میں نے اتنا اس کا تذکرہ نہیں کیا. اتنی شان کا وہ گھر ہے, کوئی نہیں. آپ پوچھیں کسی سے تو آپ کو کوئی موقع ملے تو ملے. یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, سامنے کلاک ٹاور ہے ملک عبدالعزیز کی طرف سے, ان کی طرف سے وقف ہے, اس کی پوری آمدن جو ہے وہ حرم میں جاتی ہے. تو بہر انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے سے پھر وہ جگہ جو ہے مکہ میں اب ایک جو خریدی گئی اور وہ سارا بیت محرم پہ لگتا ہے, اور ابھی بھی اس میں پیسہ ہے. اس وقت واقعی پھر یہ اب آپ پوچھ رہی ہیں تو میں نے تو اللہ سے بھی پوری نیت کی, اور میں نے الحمدللہ وہاں بات بھی کی کہ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں رہنے والے کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اکاؤنٹ, اور انشاءاللہ جو ہی مجھے پتہ چل گیا تو آپ کو بھی بتاؤں گی. تو میں نے تو فوراً نیت کی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ایسی کوئی چیز ہے, ظاہر ہے کہ انسان کے پاس اپنے ماں باپ سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے, عورتوں کے پاس تو دو ہی ذرائع ہیں نا, ایک ماں باپ اور ایک شوہر. تو میں نے نیت کی کہ جو چیز مجھے بہت اچھی لگے گی میں نے اس کو بیچ باچ کے تو میں نے یہاں کہیں دینا ہے, کہ آپ اس کو کچھ بھی کریں بس ایسی جگہ ڈال دیں کہ جو گرو ہوتا رہے اور مجھے پتہ نہ چلے چلے, اور ہم نے کہاں انتظام کر سکنا ہے, لیکن بس کوئی ہمارا قبول کرے. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بس ہم سے لے اور قبول کر لے. ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کا تو اللہ قبول بھی نہیں کرتا, چلو بھاگو تم کیوں, تمہارے پیسے میں کیوں لگاؤں. ورنہ آپ دیکھیے کہ جتنا مسلمانوں میں دین پہ لگانے کا شوق ہے ہم سب تو سارا چھوڑ کے وہیں لگائیں, یہ بھی ایک حکمت ہے. وہاں کیوں نہیں ہے پھر, جیسا پیسہ ہوگا کسی کا شبہ والا پیسہ ہے, کتنے فتنے ہوں گے. وہاں پیسہ بھی انہی لوگوں کا لگتا ہے کہ جن کے مال کو اللہ قبول کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں خلوص دے دے, بس ایسے کام کرنے والا دے دے کہ آن گوئنگ چیزیں اور جو ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. یہ لکھتی ہیں کہ حج کا ارادہ ہے, آپ بتائیے بتائیے بھی ٹپس وہاں کام آئیں گی اور کوشش کریں گے. الحمدللہ بات کا مقصد بھی یہی تھا کہ میٹھی میٹھی باتوں سے بہتر ہے کہ ہم پھر علم کی باتیں کر لیں. اور یہ لکھتی ہیں ایک اور کمنٹ ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجازت لیتے ہیں. جیسے میں آپ کے ساتھ تھی استاذہ جی, ایسے تو وہاں جا کر بھی محسوس نہیں کیا جیسے آج لگ رہا تھا. الحمدللہ تو بہرحال اس طرح سے ان چیزوں کو لیتے رہیں. اور جو چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی جو میں آپ سے آخری بات آج کے طور پہ کہہ دوں گی, کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کر رہی تھی کہ میرا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے, اور وہاں بیٹھ کے وہ بہنیں جو بیچاری محبت میں اتنا کچھ کرتی ہیں, میں عورتوں کی باتیں بھی سنتی تھی, اسی تو صبح آ جانے ہیں. کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو صبح آ جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور بیچ میں ظہر اور فجر کے بیچ میں تھوڑی دیر جاتے ہیں, پھر ظہر سے عصر پھر مغرب سے عشاء پورا وقت حرم میں رہتے ہیں, اور مطلب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں سوچتی تھی کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو ان کو تھوڑا سا موقع دے, کوئی بات کا موقع ہو, کچھ یہ کریں. پھر ہمارے پاس تھوڑی سی سیڈیز تھیں, پھر ہمیں سب سے خوبصورت چیز یہ کہ مدینہ میں جو عورتوں کی لائبریری اس کے اندر بھی ایک میٹنگ تھی, جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں جا کے میں نے تھوڑی سی اردو بکس دیکھیں, اور پاکستانیوں کے لیے بھی انہوں نے کافی بنائے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستانیوں کو علم کی بڑی ضرورت ہے. تو انہوں نے پورا مسجد نبوی میں 25 نمبر جو ڈور ہے اس کے ساتھ سب جگہیں, اوپر انہوں نے پوری ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے کوئی دعویٰ میٹیریل ہے وہاں جائیں. تو آپ جب بھی کبھی جائیں نا تو بازاروں میں گھومنے اور کھانے پینے سونے کی بجائے یہ چیزیں ڈھونڈیں. پھر اس میں ایک اور بہت اچھی چیز جو یاد آ گیا تو بتاؤں کہ ڈور 25 کے بعد اندر جائیں تو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو کالے رنگ کا ایک پارٹیشن دکھے گی, اس پارٹیشن کے اندر پورا دن وہاں قرآن کی کلاسز چلتی ہیں. कोई भी अपनी अरबी ठीक करना चाहता है तजवीद कुरान की वो सुनाते हैं। और हमारी एक सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो शाम के वक्त कभी कहीं गई तो कहती है कि अनबिलीवेबल किस्म की वो तफसीर तजवीद की क्लास थी वहां, जो वहां की सिस्टर्स ले रही थी। तो वॉलंटियरली आपको, मुझे, सबको कहते हैं कि आप आएं और अपना कुरान सुनाएं, सीखें। तो अगर आप देखिए, अगर 8 दिन के लिए मदीना गया और 8 दिन रोज आप जाके वहां 1-2 घंटा सुनाए, तो तोहफा लेकर आए अपनी तजवीद की बेहतरी का। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। वक्त पूरा हो गया, जो कमेंट्स है सबके वो पढ़ लें। जो यहाँ की लेडी किंग है, यानी जो मतलब कोई उनकी शाही खानदान की कोई लेडी, उनके थ्रू इनको इजाजत मिली है, क्योंकि वो जाहिर है कि हम जैसों को कौन जानता है वहाँ, हमारी क्या औकात है ना। तो उसमें कुछ हद तक तो लोग जाते हैं, लेकिन हर एक जगह नहीं जाने देते। लेकिन जो दिल की कैफियत उस म्यूजियम में जाके मेरी बदली थी, बिलीव मी, क्योंकि वो हिस्ट्री से प्यार है। ये हजरत इब्ने अब्बास के दौर का ये स्तून था, एक बिल्कुल वहां से वुडन सा, इतने को साइज का लकड़ी का तना था और उसके ऊपर कुछ था। तुम तो कि ये 65 हिजरी के वक्त है कि खाना काबा के अंदर ये एज अ पिलर यूज होता था। तो वो फिर ऐसा दिल करता था कि इन चीजों से बातें करें, कह तुमने क्या क्या नहीं देखा हुआ हिस्ट्री का। वहां वो पूरा डोर भी है जो इस वक्त, तो जो आपको था कि ये सोने के तारों से बनता है ना, तो जो पिछले पुराना था वो सब कुछ है। यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक पूरी मुस्लिम हिस्ट्री उसमें आपको दिखती है। बिल्कुल मदीना का आप देखिए, मक्का से जो मदीना का सफर है तकरीबन, वैसे कहते हैं 6 घंटे का, लेकिन हमें जो वो लेके गए थे, प्राइवेट गाड़ी थी, कोच थी, और हमें ऐसे लगा कि पलकों में झपकते हुए सफर चला गया। इतने क्वेश्चन आंसर्स मैंने, बल्कि वो नोट्स मंगवाए हैं, मुझे जब मिल जाते हैं तो मैं आपको एज इट इज वो सारी सुना दूंगी जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हुए। और जोक्स हमें, मतलब दीन के नाम पे आप ये मत सोचिए कि सारा होकर रोते ही रहते हैं लोग। जो हमारे साथ उस्ताद थे, उन्होंने हमें इतने उलमा के जोक्स और जो इल्मी बातें होती थी, उसने ये कहा वो सुनाए कि हम इतने खुश हो रहे थे कि देखें ये कितनी खूबसूरत जिंदगी होती है इल्म वालों की, दीन वालों की जिंदगी, कि जिसके अंदर मजाक भी है, अच्छा भी लगता है और झूठ भी नहीं है। फिर उसमें हम लोगों ने वो, मैं जब उन रास्तों पे थी तो मैं बिल्कुल दिल की अजीब हालत थी कि हम कितने आराम में एसी गाड़ी में, और खाने और पीने और स्नैक्स, नबी सल्लम जब गुजरे थे तो क्या था, और उनकी जान की तो कीमत लगी हुई थी। तो फिर वो रोना आता है कि अल्लाह हमारा ईमान ही इतना है, बस तू हमें इसमें ही ले आए, तेरी यही बड़ी मेहरबानी है। आज भी मैंने उन्हें कहा कि अगर वही रस्ते होते वैसे ही छोड़ देते जैसे थे, तो कितने लोग थे जो आते हम में से नरम गरम सफरों के आदी हैं।
जी शेयर करना चाहूंगी, जब 2007 में मैं गई थी तो ये जो हजरत उस्मान का हमारे ये सब चीजें मैंने भी देखी थी, और उस वक्त तो खैर इज नहीं था, तो उस तरह ने जो जहाँ शराब का हुक्म आया सब पैके थे भी नहीं, ट्रायलर मिल गए वहाँ के रहने वाले, तो मैंने पूरा जो है टूर किया था। तो जब हम मदीना जा रहे थे रस्ते में, तो वो हमें बता रहे थे कि अभी हम गुजर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी है वो यहाँ नजदीक
अबुआ के मुकाम पे जो,
हाँ जी, और वहाँ पे अक्सर जो है बादल का टुकड़ा रहता है बारिश, और अब जब हम वाकई गुजरे सदर जी, तो उस वक्त सिर्फ उस टुकड़े में पूरी धूप थी और उसी हिस्से में बस बारिश
होते अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बस हम सब के अमल अच्छे कर दे। यकीन करें जो चीज़ कुरान की क्लास, ये दीन, ये मोहब्बत, ये तो उससे भी ज्यादा है। ये तो मैं कभी भी नहीं कह सकती आपको कि अगर आपने हज नहीं किया या उमरा नहीं किया तो आप बड़े काबिल रहम हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने कुरान की लज्जत नहीं ली तो आप काबिल रहम हैं। हज और उमरा भी तभी मज़ा आता है जब अल्लाह की बात समझ आती है। तो कल के कमेंट्स में शाम की क्लास में यही लिखा तो उन्होंने कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सफ़र, बल्कि इंचार्ज हैं तो उन्होंने फीडबैक भेजा हुआ था ईमेल में के क्लास में लोगों को हमने जब आपकी शेयरिंग सुनाई तो बहुत खुश, यानी सैड हो रहे थे, कुछ लोग लिख रहे थे हम क्यों नहीं गए। लेकिन जब मैंने उसमें आखिर में ये कहा कि इल्म के बाद जाएं, तो एक स्टूडेंट ने लिखा था कि आज मुझे पता चला कि अल्लाह मुझे अभी तक क्यों नहीं ले गया, कि पहले मैं इल्म हासिल कर लूँ फिर जाऊँ। तो शायद हम सब इकट्ठे चलें कभी फिर, अल्लाह ताला खैर करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم ما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته